नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ। और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी सबको नमस्कार।
तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स और पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची, जबकि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला महिला डबल्स के फाइनल में पहुंची। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच पांचवें दौर की बाजी ड्रॉ रही। ओवल में भारत और प्रधानमंत्री इलेवन के बीच दो दिन के क्रिकेट अभ्यास मैच के पहले दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो सका। शुरुआत करेंगे बैडमिंटन के साथ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के शीर्ष खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सेन ने जापान के शोगो ओगावा को 21-8, 21-14 से पराजित किया। अब खिताबी मुकाबले में लक्ष्य का सामना सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह से होगा। तेह ने भारत के प्रियांशु राजावत को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। उन्होंने हम वतन उन्नति हुड्डा को 21-12, 21-9 से हराया। एक अन्य मुकाबले में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की भारतीय जोड़ी भी थाईलैंड की वेनियापा एमसार्ड और नुताकरण एमसार्ड को 18-21, 21-18, 21-10 से हराकर महिला डबल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। इस बीच मिक्स डबल्स में भारतीय जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने चीनी जोड़ी झाओ झी होंग और योंग जी यी को 21-16, 21-15 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। संजीव, दिल खुश हो गया, क्या शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय शटलर्स का जहां तक आज के खेलों का सवाल है। और अब फाइनल की राह अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी आसान, कितनी मुश्किल होगी भारतीय खिलाड़ियों के लिए, विशेषकर अगर मैं पुरुष सिंगल्स की बात करूं, चूंकि लक्ष्य सेन के सामने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन ते होंगे, तो इस फाइनल मुकाबले पर आपकी क्या टिप्पणी है?
देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा दिल खुश हो गया, तो मैं भी वही कहूंगा एज ए फैन। लेकिन अगर एक विश्लेषक के तौर पर देखूं, अगर इसको बहुत सूक्ष्मता से देखूं जी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी, खासतौर पे अगर देखें तो लक्ष्य सेन की बात करें, उन्होंने अच्छा तो किया है लेकिन बहुत सारे टूर्नामेंट्स नहीं जीते हैं, बहुत चोटिल रहे हैं। ओलंपिक्स में भी देखिए, एकदम वहां मेडल के करीब जाके मेडल नहीं जीत सके, और कई टूर्नामेंट्स में क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए, प्री क्वार्टर में बाहर हो गए, दूसरे राउंड में हार गए, ऐसे। तो ये जो मैं एक बताना चाहूंगा कि जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एक कैटेगरी है डिफरेंट, जो जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है सुपर 100, उसके बाद सुपर 300। तो ये 300 वाली
कैटेगरी है
नीचे से,
जी जी जी,
और उसके ऊपर जाइए तो 500 है, 750 है, 1000 है। और इसमें अगर आप देखें तो दुनिया के कोई बढ़िया टॉप खिलाड़ी ने हिस्सा नहीं लिया, एक्सेप्ट लक्ष्य सेन को रख लें। और टॉप थ्री वेमेंस में और टॉप थ्री मेंस में दोनों में ही भारत के प्लेयर थे। ये जो जो टैंक से जिनसे मुकाबला है सिंगापुर के प्लेयर, वो चौथी सीड है। इनके ऊपर राजावत भी थे और भारत के किरण जॉर्ज भी थे,
बिल्कुल।
तो ये समझ लीजिए कि यहाँ भारत का ही दबदबा है। और हरेक उसमें देखे तो सेमीफाइनल में भारत के तीन प्लेयर पहुंचे हैं, दो प्लेयर पहुंचे हैं, तो अच्छी बात है, अपने खिलाड़ी को आपने हराया और वहां पहुंच रहे हैं,
प्रोत्साहन देने वाला तो है।
बस एक चीज है कि उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा
जी, जी।
बाकी और बड़े टूर्नामेंट के लिए एक हौसला मिलेगा, बस यही फर्क है।
सही कहा आपने, चूंकि पीवी सिंधु काफी समय से बेहतर प्रदर्शन की तलाश में थी और अब हमें फॉर्म नजर आ रहे हैं। जहां तक सैयद मोदी टूर्नामेंट की बात है तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है, जहां तक अब तक का सफर है फाइनल में पहुंच गई महिला सिंगल्स के।
देखिए, सिंधु के साथ भी मैं वही कहूंगा, सिंधु ने अच्छा खेल दिखाया है लेकिन बस उनके लिए यही कॉन्फिडेंस वाली बात होगी कि उन्होंने एक बड़ा सुपर 300 का जो टूर्नामेंट है वहां जीता है और उनको एक हौसला मिलेगा। लेकिन इसी टूर्नामेंट में अगर देखें तो कुछ मैच उनके बहुत टफ रहे, जैसे वो वर्ल्ड नंबर अभी बहुत नीचे चली गई, 18वें नंबर पर हैं,
बिल्कुल।
अब कोई 118 नंबर का प्लेयर है, उसके खिलाफ अगर आप बहुत मुश्किल से जीत रही हैं, तो वो थोड़ा सा आगे के लिए चिंता की बात है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि भारत के दोनों खिलाड़ियों के लिए खिताब जीतना कोई मुश्किल वाली बात होगी।
यानी कोई राह मुश्किल नजर नहीं आ रही है जहां तक पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के फाइनल का सफर है।
जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है दोनों को खिताब जीतना चाहिए।
अच्छा, महिला डबल्स की अगर बात करें तो त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद के बारे में आपका क्या ख्याल है?
बिल्कुल, देखिए फिर ये सेकंड सीड है
जी,
और इसके बाद जो है तनिषा और अश्विनी टॉप
पोनप्पा
सीड थी, तो है इस टूर्नामेंट में।
जी।
तो इन और ये जो जोड़ी है ये दोनों ही यंग प्लेयर हैं और अच्छा कर रही हैं। तो इवन इफ अगर ये Super 300 टूर्नामेंट है, अगर वो अच्छा कर रही हैं, खिताब जीत रही हैं,
जी
तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि बहुत समय तक पुनप्पा और उनकी एक पहले जो जोड़ी रहती थी वो
जी
खेलती थी, लेकिन अब फिर उन्होंने नई जोड़ी बनाई ज्वाला गुट्टा और पुनप्पा की, तो अब ये उधर अच्छा कर रही है और उनसे कम उम्र की ये दोनों खिलाड़ी हैं जो दोनों अच्छा कर रही हैं, तो ये भारतीय बैडमिंटन के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छा
भविष्य के
सा।
अगर खिलाड़ियों की बात करें तो।
जी।
अच्छा, मिक्स डबल्स के बारे में क्या कहना है आपका, चूंकि ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भी फाइनल में पहुंच गए हैं?
हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी मैं कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं, ये जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, उनमें ये खिलाड़ी शामिल हैं और ये यहाँ जीतते हैं तो इनको भी आगे के लिए हौसला मिलेगा।
और अब बात शतरंज की। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी कुकेश और चीन के मौजूदा चैंपियन डिंग लीरेन ने आज सिंगापुर में अपनी बेस्ट ऑफ 14 सीरीज की पांचवीं बाजी में कड़ी टक्कर के साथ ड्रॉ खेला। श्रृंखला में लगातार दूसरे ड्रॉ के बाद दोनों खिलाड़ियों के ढाई ढाई अंक रहे, जिससे खिताब के लिए कड़ी टक्कर बनी हुई है। बेस्ट ऑफ 14 प्रारूप के साथ दोनों खिलाड़ी अभी भी 7.5 अंकों के विजयी अंक से दूर हैं। संजीव, मुकाबला तो बराबरी का है, लेकिन आपको संभावित विजेता कौन लग रहा है, पहली बात, और क्यों, दूसरी बात?
देखिए मैं भारतीय के तौर पे तो चाहूँगा कि हमारे गुकेश ही चैम्पियन बने और विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारत के ऐसे खिलाड़ी बने जो
होनहार
बच्चे और
खिलाड़ी जी
सबसे कम उम्र में बने,
जी
क्योंकि 18 साल की उम्र में आज तक किसी ने खेला नहीं था, वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। और क्यों आप कह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उनकी तैयारी अच्छी है और पिछले एक साल में अगर देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। डिंग लेरेन का अगर पिछले वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद से अब तक का देखें तो उनके हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रहे हैं, कुछ मेंटल हेल्थ का इशू रहा है। इसके अलावा कई टूर्नामेंट्स में वो अच्छा नहीं कर पाए और जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे उस समय जो उनकी रेटिंग थी उससे ज़्यादा येलो रेटिंग में उनके अंक उन्होंने गंवाए हैं।
जी
इसका मतलब है कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही है, अच्छा नहीं कर सके हैं। तो गुकेश कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड खिलाड़ी लग रहे हैं। शुरुआत देखिए कितनी अच्छी नहीं हुई थी, हार गए थे
जी
और उसके बाद बाउंस बैक करते हुए जीत के बराबरी करना और अब टक्कर दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब प्रेशर गुकेश पर नहीं है, डिंग लेरेन पर है।
बिल्कुल सही कहा आपने। गुकेश की अगर बात करें तो आजकल फॉर्म में भी हैं, उनमें प्रतिभा भी है, हौसला भी है और जोश भी है। यकीन करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगे।
बिल्कुल
और अब बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया पीएम 11 के खिलाफ भारत के 2 दिवसीय अभ्यास मैच का पहला दिन आज कैनबरा के मनुका ओवल में बारिश के कारण नहीं हो सका। अब केवल एक दिन का खेल बचा है, इसलिए रविवार को यानी कल दोनों टीमों के बीच 50 ओवर का मुकाबला होगा। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड साइड स्ट्रेन के कारण एडिलेड टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि पेसर सीन बॉट एबॉट और ब्रेंडन डॉगेट को पिंक बॉल टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया है। पेसर ने पर्थ में पहले टेस्ट में 5 विकेट लिए थे। संजीव, भारतीय खिलाड़ियों के पास ये एक बहुत अच्छा अवसर था अभ्यास का और अगले टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करने का।
हाँ, ये निराशा तो होती है लेकिन मौसम पर किसी का जोर नहीं है।
जी
और अब ये जो अनाउंसमेंट जो मैच आज का जो नहीं हो सका आज का खेल, तो उसके बाद एक वहाँ पर घोषणा की गई कि कल 50-50 ओवर मतलब वनडे टाइप होगा।
जी
थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि अगर आप टेस्ट खेलते हैं तो उसमें आपका जो 5 दिन का मैच होता है, जो आपका माइंडसेट होता है वो अलग होता है, किस तरह से इनिंग्स को आगे बढ़ाना है।
सही
अब 50 ओवर में आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन उसमें उस प्रैक्टिस करें, तो अगर ये संभव होता है तो बस एक बात होगी कि आपको पिंक बॉल से प्रैक्टिस का थोड़ा मौका मिल जाएगा मैच सिचुएशन में, अदरवाइज ये एक आइडियल प्रिपरेशन नहीं होगा।
अच्छा, तैयारियों की बात की जाए तो संजीव, एडिलेड टेस्ट की तैयारियां भारत की ओर से किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है और किन को ड्रॉप करने की संभावना आपको नजर आती है इस मैच में?
देखिए, रोहित शर्मा जब आएंगे और शुभमन गिल, दो खिलाड़ियों के आने की उम्मीद है, तो ऐसे में तो मुझे लग रहा है कि ध्रुव जुरेल और देवदत्त पाडिकल हटेंगे। रोहित शर्मा किस पोजीशन में खेलेंगे ये हर कोई अलग अलग बात कह रहा है। यहाँ चेतेश्वर पुजारा जो वहाँ के कंडीशन में बहुत खेल चुके हैं, टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं
जी,
वो कह चुके हैं कि रोहित शर्मा चूंकि लेट से गए हैं, उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है, तो नंबर तीन पर खेलें और राहुल और जायसवाल जो है ओपन करें, तो ये देखना है कि क्या होता। बट दो प्लेयर जरूर आएंगे टीम में और दो बाहर होंगे जो कि पर्डिकल और जुरेल
है, लेकिन निश्चित रूप से हमारी टीम के जो है हौसले बुलंद है।
हाँ, एक पर्थ में जो जीत मिली है वहां से तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है भारत।
आगे बढ़ते हैं, दुबई में एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए के मैच में आज पाकिस्तान ने भारत को 43 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 281 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शाहजेब खान ने 159 रन की शतकीय पारी खेली और उस्मान खान ने 60 रन बनाए। जवाब में भारत की पूरी टीम 48वें ओवर में 238 रन ही बना सकी। भारत की ओर से निखिल कुमार ने सर्वाधिक 67 रन बनाए जबकि मोहम्मद इनान ने 30 रन का योगदान दिया। संजीव, कहां कमी रह गई?
देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जो जो दोनों ओपनर थे उनके, साजेब ने तो जरूर शतक बनाए, दूसरे ओपनर जो भी उनके थे, तो ये इनकी ओपनिंग बहुत अच्छी रही उन्होंने। और ये जो साजेब, देखिए उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया, 10 छक्के लगाए उन्होंने
जी,
और वो बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है मैंने सुना था, लेकिन वो बहुत संभल कर खेले और उन्होंने अपनी पारी को जिस ढंग से आगे बढ़ाया और बाद में वही डोमिनेट करने लगे और बहुत तेजी से रन बनाए। 280 प्लस वहाँ के विकेट पे, मैंने एक कमेंट्री में सुन रहा था कि 187 एवरेज स्कोर है, वहाँ पर 280 प्लस हुआ और शुरुआत अच्छी नहीं रही तो प्रेशर वहीं से बन गया, उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही।
और अब बात हॉकी की। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन ने हॉकी इंडिया लीग HIL के साथ साझेदारी की है ताकि देशभर के लाखों दर्शकों तक टूर्नामेंट का प्रसारण किया जा सके। और जानकारी के साथ है हमारी सहयोगी दिव्या तोमर।
HIL 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस साल का संस्करण ऐतिहासिक है क्योंकि ये महिला हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन सत्र के साथ साथ बहुप्रतीक्षित पुरुष प्रतियोगिता का भी प्रतीक है। इस लीग में 8 पुरुष टीम और 4 महिला टीम भाग लेंगी जो राउरकेला और रांची में प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसमें भारत और दुनिया भर से शीर्ष स्तर की प्रतिभाएं दिखाई देंगी। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा है कि प्रसार भारती को हॉकी इंडिया लीग के साथ साझेदारी करने का सौभाग्य मिला है। हमारा लक्ष्य हॉकी की रोमांचक भावना को हर जगह दर्शकों तक पहुँचाना है, जिसमें महिला HIL का ऐतिहासिक डेब्यू भी शामिल है। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा है कि टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने के बाद भारतीय खेल प्रेमियों को भरोसा है कि भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग वापस आ रहा है। सार्वजनिक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन इस साझेदारी के माध्यम से इस व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए तत्पर है। दुनिया भर के खेल प्रेमी अब DD स्पोर्ट्स और प्रसार भारती के हाल ही में लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म पर भारतीय हॉकी लीग पुरुष और महिला दोनों देख सकते हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन।
संजीव, बहुत संक्षिप्त में, निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, आप बताएं कि हॉकी को और लोकप्रिय बनाने में इसका कितना बड़ा योगदान होगा? बहुत संक्षिप्त में,
कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा योगदान होगा। आप जो इनका जो प्रसारण होगा
जी,
इसको आप किसी भी जगह देख सकते हैं, गांव-गांव पर देख सकते हैं और इनका जो नेटवर्क है बहुत बड़ा है, तो ये हॉकी के लिए अच्छा होगा और हॉकी प्रेमियों के लिए भी अच्छा होगा।
और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
नमस्कार।
और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।